ओम शांति। सात दिसंबर 1988, एक बहुत भयंकर भूकंप आर्मेनिया देश में आया था। वो भूकंप इतना भयंकर था कि लगभग 25,000 लोग उस भूकंप में मर गए। उस भूकंप के दौरान एक सत्य घटना का वर्णन है। एक पिता एक स्कूल की इमारत के पास पहुंचता है और जोर जोर से अपने बेटे का नाम ले लेकर चिल्लाता है, अरमंड अरमंड अरमंड। वो जो इमारत थी भूकंप की वजह से संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी, सारी इमारत गिर गई थी, मलबे ही मलबे सब जगह थे। और वो पिता फिर भी चिल्ला रहा था और अपने बेटे को पुकार रहा था और चारों ओर तबाही तबाही थी, क्योंकि भूकंप बहुत ही भयंकर था। जैसे कहा कि 25,000 लोग आर्मेनिया के उस भूकंप में खत्म हो गए थे। पर वो पिता अपने बेटे का नाम ले रहे थे और चिल्ला रहे थे। सबने बहुत समझाने की कोशिश की पर वो मानने को तैयार नहीं, और वो जो इतनी विशाल इमारत अस्त व्यस्त और गिर गई थी, वो उस इमारत के अंदर घुस जाते हैं। लोग उनको पकड़ते हैं कि नहीं जाओ, अभी भूकंप थमा नहीं है, भूकंप के झटके अब भी आ रहे हैं। पर वो नहीं रुकते, वो कहते नहीं, मेरा बेटा होगा और मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है। वो कहता है बेटा यहां तो कोई भी नजर नहीं आता है। जो रेस्क्यूअर टीम आई वो भी सर्वे कर जा चुकी है, उन्होंने भी सब जगह देख लिया, यहां पर जीवित कोई भी व्यक्ति नहीं है। परंतु वो कहता है नहीं, मेरा बेटा होगा और वो मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है। और वो जाता है उस इमारत में जहां पर मलबे ही मलबे है और सारी इमारत गिरी हुई है, और एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा आठ घंटा बारह घंटा खोदते रहता है, यहां खोदता है वहां खोदता है, यहां के पत्थर उठाता है वहां के पत्थर फेंकता है, दस घंटा चौदह घंटा। लोग बाहर से चिल्लाते अब आ जाओ, अब नहीं मिलने वाला है कोई, चौबीस घंटा फिर भी खोदते रहता है, और छत्तीस घंटा। और एक स्थान पर वो पहुंचता है और वहां से कुछ पत्थर उठाता है और वो चिल्लाता है, फिर से अपने बेटे का नाम लेता है अरमंड। तो नीचे से आवाज आता है डैडी, उसका बेटा वहां होता है अब भी जीवित, और उसके साथ 13 और बच्चे होते हैं वहीं पर दबे हुए, और वो सब के सब जीवित, और वो सब बाहर निकलते हैं, वो सबको बाहर निकालता है। तो लोग उसको बाद में इंटरव्यू होता है कि आपको कैसे पता वहां होगा, वो कहते मुझे कुछ पता नहीं था वहां कोई है, फिर आप इतना खोदते क्यों रहे और आप इतनी परिश्रम क्यों करते रहे। वो कहता है मैं परिश्रम इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने अपने बेटे को वचन दिया था, वादा किया था सुबह कि मैं तुम्हें स्कूल के बाद लेने आऊंगा, इसलिए मैं खोदता रहा क्योंकि मैंने वादा किया था। तो एक पिता और उसका प्यार इस घटना से दिखाई देता है, जबकि सब लोग कहते हैं कि कोई नहीं होगा, पर वो खोदते रहता है खोदते रहता है खोदते रहता है। जहां कोई आशा नहीं होती है वहां पर भी जारी रखता है अपना काम और एक दिन सफल होता है। तो ये एक सत्य घटना है, ऐसे ही पिता प्रेम की एक और सत्य घटना है जिसका क्रिश्चियन धर्म में, ईसाई धर्म में कई बार जिसको सुनाया जाता है। एक चर्च में एक पादरी जिसको सभी लोग बहुत मानते हैं और जो बड़ा प्रसिद्ध है, एक बार वो पादरी कहता है कि आज हमारे चर्च में एक मुख्य अतिथि आए हैं, आज हमारे चर्च में एक बड़े ही सम्माननीय व्यक्ति आए हैं, आज हमारे चर्च में एक बुजुर्ग आए हैं जो अपने अनुभव की कुछ बातें आपको सिखाएंगे। और वो पादरी उस वृद्ध व्यक्ति को सामने लाता है और वो वृद्ध व्यक्ति अपना प्रवचन, अपनी बातें बताना चालू करता है और वो एक घटना सुनाता है, एक कहानी। वो कहता है एक बार ऐसा हुआ, वो जीसस क्राइस्ट के प्रेम के विषय में सुना रहा है। वो कहता है एक बार ऐसा हुआ कि एक पिता अपने इकलौते बेटे के साथ समुद्र यात्रा पर जाता है और उनके साथ वो जो पिता है उसके मित्र का भी बेटा है। तो ऐसे तीन लोग, पिता, उसका बेटा, इकलौता बेटा और एक उसके मित्र का बेटा। और वो जहाजी यात्रा कर रहे होते हैं कि अचानक भयंकर तूफान आ जाता है और वो तूफान इतना भयानक है कि अब बचने की बहुत कम संभावना है। वो पिता जो है वो बहुत चैंपियन है तैरने में और समुद्री इस तरह की यात्रा में, और वो कहता है कि एक ऐसा समय आता है कि मेरे पास कुछ एक लाइफलाइन, कहता है वो, एक रस्सी कि जिसमें मैं दोनों में से एक ही को बचा सकता हूं। और मेरा जो बेटा होता है वो बहुत धार्मिक चित्त का, जिसको फेथ है ईश्वर पर और जिसका जीवन बहुत सात्विक है, और दूसरा जो बेटा होता है उसके मित्र का, उसके विषय में मुझे ज्यादा पता नहीं होता है पर इतना जरूर पता होता है कि वो नास्तिक है, वो भगवान को नहीं मानता। तो ऐसी जब तूफानी घड़ी होती है तब उसके हाथ में एक ही ऑप्शन, एक ही विकल्प होता है कि वो एक ही बेटे को बचा सकता है। वो रस्सी एक के पास ही फेंक सकता है जो बच जाए और दूसरा मर जाए। तो वो सभा से पूछता है ये गृहस्थ, ये बूढ़ा व्यक्ति, कि उस बूढ़े व्यक्ति ने किसको बचाया होगा। और वो खुद ही कहता है कि वो जो व्यक्ति था, वो पिता, वो जो नास्तिक होता है उसके मित्र का बेटा, उसके पास वो लाइफलाइन फेंक देता है और वो बच जाता है। और जैसे ही लाइफलाइन फेंकता है उसका अपना बेटा समुद्र की गहराई में कहां खो जाता है कि पता ही नहीं चलता, उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिलती है। तो ये प्रवचन पूरा होता है, उसके बाद वो नीचे उतरता है। तो सभा में कुछ युवक होते हैं तो वो कहते हैं हमको नहीं लगता है कि आपने कुछ ठीक किया, ये कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन थोड़ी था। क्या आपको गारंटी है कि वो जो नास्तिक था आपके बचाने से वो आस्तिक बन जाएगा? आपको क्या लगता है कि वो जो नास्तिक जिसको आपने बचाया वो हो सकता है कोई खूंखार डाकू या टेररिस्ट भी बन सकता है? आपने ये कैसे सोच लिया कि आपने नास्तिक को बचा लिया तो बहुत अच्छा काम किया? और आपने कहा इस भावना से बचाया, उस व्यक्ति ने, वो कहानी का, कि उसने जो बचाया वो अच्छा ही काम किया। वो कहता है देखो एक बात मैंने कहानी में नहीं बताई और वो ये है कि वो जो पिता है ना वो मैं हूं, और ये यहां का जो पादरी है ना जिसको आप लोग बहुत मानते हो, ये वही बेटा है, नास्तिक। तो एक पिता का प्रेम बड़ा विशाल होता है, एक पिता का प्रेम बहुत सारी चीजों को देख लेता है, बेहद का होता है। ये तो लौकिक पिता थे दोनों, जो पहला पिता खोदता रहा, ढूंढता रहा, हार नहीं मानी, और दूसरा पिता ये सोचता है कि मेरा बेटा वैसे भी आस्तिक है, मर भी गया तो भगवान के राज्य में तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा ईसाई धर्म के अनुसार, पर ये जो नास्तिक था इसका भी मुझे कल्याण करना, ये भी तो मेरा ही बेटा है। तो ये तो संसारिक पितृ प्रेम। ये यदि लौकिक पिता ऐसा कर सकता है तो उस पारलौकिक पिता का प्रेम कैसा होगा। तो कल की जो अव्यक्त वाणी थी किस पर थी? एक पिता के प्रेम पर, परमात्मा प्रेम पर, परमात्मा प्यार। कैसा है ये प्यार, ये प्रेम कैसा है? ईश्वरीय प्रेम। कैसा है? प्रॉपर्टी के रूप में तुम्हें मिला है। संसार की आत्मा है, एक बूंद की प्यासी है प्यार की। प्यार ही चाहती है, पैसा तो बाद में चाहती है। हर एक आत्मा की चाह किसकी है? प्रेम की है। हर आत्मा प्यासी है प्यार के लिए। और जब तक वो प्यार उसे नहीं मिलता तब तक वो प्यासी ही रहती है। आत्मा की भूख प्रेम की है, आत्मा की प्यास प्रेम की है। बिना प्रेम के जीवन कैसा है? नीरस, बेजान, बेरस, विरस, नीरस। बिना प्रेम के जीवन में कोई जान नहीं, जान में कोई जान नहीं, बेजान है जीवन। तो प्रेम सबसे बड़ी चीज है। बिना प्रेम के सब कुछ मिल जाए तो भी व्यक्ति खाली है। एक ऐसा घर जहां पर सब लोग बहुत, सबके पास ऐशो आराम की हर वस्तु है पर प्रेम नहीं है उस घर में, तो क्या कहेंगे? पति पत्नी से बात नहीं करता, पत्नी पति से बात नहीं करती, बच्चे माँ बाप के लिए प्रेम नहीं है पर है उनके घर में सब कुछ, संपत्ति है, धन है, सब है। एक डिपार्टमेंट जिसमें बॉस और उसके साथी और उसके सारे जूनियर्स सब लोग है, काम तो कर रहे पर आपस में प्रेम नहीं है, तो क्या कहेंगे? तो ऐसा घर तो गरीब घर हुआ। तो प्रेम सबसे बड़ी संपत्ति है, बाबा ने कहा। तो कल की अव्यक्त वाणी में क्या देखा बाबा ने? कौन किसको देख रहा है? किसने क्या देखा? बाबा ने योगियों की सभा देखी है, संसार की भोगियों की सभा है, और ये परिवार योगियों की सभा है। केवल योगी नहीं है, सहयोगी है। किस कार्य में सहयोगी? परमात्मा कार्य में सहयोगी। कितनी बड़ी बात है ये। वो विदेश की महिला का उदाहरण है, वो फ्लाइट से उतर रही होती है तो वहां की एयर होस्टेस, सत्य घटना, एक माता पूछती है आप क्या करते हो? वो कहती है वी हेल्प गॉड। सारा संसार क्या कहता है? हम भगवान से हेल्प मांगते हैं। तो वो एयर होस्टेस उस माता को पूछती है आप करते क्या हो आखिर ब्रह्मा कुमारी में? तो वो कहती है वी हेल्प गॉड। हम भगवान को मदद करते हैं। कितना भयंकर उत्तर है। कोई संसार का व्यक्ति सोच नहीं सकता ये। सारी दुनिया तो भगवान के पास जाती है मदद मांगने के लिए और हम उसको मदद कर रहे हैं। भगवान से भी बाप के भी बाप हो गए। भगवान को मदद करने चले तो वी हेल्प गॉड, खुदाई खिदमतकार। तो हम सब कौन है? योगी आत्माएं, स्नेही आत्माएं। स्नेही अर्थात जिनका स्नेह बाप से है, भगवान से है, परमात्मा प्यारे, भगवान को प्रेम करने वाले, ईश्वरीय आशुक आशिक। हम सहयोगी आत्माएं जो उसको सहयोग देते हैं। और तीसरा सहज योगी। बाबा ने कहा केवल बच्चे बाप से कहते हैं ये ज्ञान की गहरी बातें हमसे याद नहीं रहती है, ये मुरली वो मुरली क्या क्या करे, साकार मुरली भी पढ़ो, अव्यक्त वाणी भी याद रखो, और जो 69 से अब तक मुरलियां चली है वो पढ़ी नहीं, वो उसको भी पढ़ना है, और वो अव्यक्त संदेश भी पढ़ना है, और फिर कहते हो ज्ञानामृत के अनुभव भी पढ़ते रहो, और फिर कहते हो कि किताबें तो तुमने पढ़ी नहीं, और फिर कहते हो चिंतन कब करोगे, क्या क्या करे आशीष भाई, क्या क्या करे एक ब्राह्मण आत्मा, कितना पढ़े, और कहते हो सेवा के बिना तो कुछ नहीं होगा, और कहते हो ज्यादा ज्ञान योग में जाओगे तो तुम तो बस ज्ञान योग सेवा, पहले यहां सेवा करने आए हो या ज्ञान योग करने आए हो, और तपस्या भी करो और संबंधों का तोड़ भी निभाओ, एकांत में जाकर चिंतन भी करो, और तुमको मिलनसार भी रहना है, सन्यासी बनकर नहीं रहना है, यहां ये परिवार है, परिवार की भावना आनी चाहिए, तो परिवार में भी जाओ और एकांत में भी जाओ और ज्ञान का चिंतन भी करो और मुरली भी सुनो और मुरली भी पढ़ो, और इतना से कुछ नहीं होगा, डिस्कशन बहुत जरूरी है, बिना ज्ञान की चर्चा के क्या होने वाला है, तो और जब कर्तव्य पुकारे तो सब छोड़ दो, कर्तव्य फर्स्ट है, अपनी जो ड्यूटी दी है उसमें तुमको टाइम से पहुंचना है, सब करना है, क्या क्या करे, चार्ट भी कम नहीं, 8 घंटा तो चार्ट होना ही चाहिए तुम्हारा, और अव्यक्त मास है तो डबल पुरुषार्थ करो, अब तो बच्चे बाप से कहते हैं बाबा ये हमको याद नहीं रहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, वह क्या बड़ा अच्छा था वो, तो बच्चे बाप से कहते हैं कि बाबा हमसे याद नहीं रहता, तो बाबा ने क्या उत्तर दिया, कम से कम इतना तो याद रखो, कितना, मैं सहज योगी हूं, मैं परमात्मा प्रयार का अधिकारी हूं, ये अगर भूले तो भूल के भूल भुलैया में खो जाएंगे। तो आप सबको एक काम दे रहे हैं, आज एक डायग्राम बनाना है अपने जीवन का, कैसा डायग्राम बनाएंगे, कैसा डायग्राम बनाएंगे, भूल भुलैया देखा है सबने कैसा होता है, भूल भुलैया होता है ना, एक दरवाजा होता है और फिर ऐसे 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 कुछ कुछ रहता है उसमें, हाँ, एक साथ रास्ते होते हैं यहां से यहां से यहां से, ये भूल भुलैया होता है और एक जाने का रास्ता होता है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक होता है, मतलब इस तरह से भूल भुलैया होता है, जो आर्टिस्ट है वो बना सकते हैं भूल भुलैया मेज, इधर से रास्ता और इधर से जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, हाँ, सर्कल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो ये जो भूल भुलैया अपने जीवन के भूल भुलैया का एक डायग्राम बनाना है, या कोई एक डायग्राम बना दे वो सबके लिए काम भी आ सकता है, तो यहां पे लिखना है कौन सी भूल हुई जीवन में, फिर इस भूल से एक दूसरी भूल में प्रवेश किया, फिर उस भूल से तीसरी भूल में प्रवेश किया, तीसरी भूल से चौथे भूल में प्रवेश किया, पांचवी भूल, भूलों का एक सिलसिला कैसे चालू हुआ, यदि वर्तमान में दुख आया है, यदि वर्तमान में जीवन में कोई बंधन है, उस बंधन का भूल भुलैया कहां से चालू हुआ, कौन सी वो सूक्ष्म भूले थी, हो सकता है वो एक छोटा सा मैसेज था और वो बंधन बन गया, हो सकता है वो किसी आत्मा के प्रति छोटा सा आकर्षण था, छोटा सा, जिसने आज इतना सड़ा विकराल रूप ले लिया, हो सकता है वो छोटा सा एक बोल था, उस बोल ने आज ये बंधन निर्माण कर दिया, जैसे महाभारत में द्रौपदी का कहा हुआ छोटा सा एक शब्द, एक वाक्य, वो दुर्योधन स्वीकार ही नहीं कर पाता, चेतना पर ऐसा आघात लगता है कि वो बदले की आग में जलता है, तो कैसे चालू हुआ, तो एक भूल भुलैया बनाना है, तो मैं सहज योगी हूं, बाबा ने कहा बाकी कुछ भी याद नहीं आता है तो गया, बाकी कुछ भी याद नहीं आता है तो केवल इतना तो याद करो कि मैं सहज योगी आत्मा हूं, तो क्या देखा बाबा ने, किसकी सभा देखी, योगियों की सभा देखी, स्नेही आत्माओं की सभा देखी, सहज योगी आत्माओं की सभा देखी, सहयोगी आत्माओं की सभा देखी, परमात्मा प्यारी आत्माओं की सभा देखी, और जो बाप के प्यारे हैं वो जग के प्यारे हैं। परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं की सभा देखी, परमात्मा प्यार के अधिकारी आत्माओं की सभा देखी, ये सभा बाबा ने देखी शुरुआत में। ये सभा उन आत्माओं की है जिन्होंने भगवान से प्यार किया है। संसार के लोग प्यार नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो जानते ही नहीं। प्यार के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? परिचय, पहचान चाहिए। इसके लिए प्यार उनका है परंतु पहचान नहीं है, इसके लिए उनका प्यार कैसे पहुंचेगा उस तक? तो ये सबसे पहली बात कल की वाणी से। फिर दूसरी बात, संसार और प्यार, इसका उदाहरण दिया बाबा ने, भक्त आत्माएं और संसार की आत्माएं, दो उदाहरण है। भक्त आत्माएं किस लिए प्यासी है? एक बूंद के लिए संसार की आत्माएं प्यासी है। और भक्त आत्माएं किसके लिए प्यासी है? दृष्टि और दर्शन के लिए प्यासी है। एक झलक मिल जाए, एक बार दर्शन हो जाए बस, और तुमको प्रॉपर्टी के रूप में मिल गई। और संसार की आत्माएं भी बचपन से क्या चाहती है? प्यार। तुम्हें प्यार का सागर मिल गया, तुम्हें प्यार प्रॉपर्टी के रूप में मिल गया। बिना प्रेम के संसार में जीवन निरस है, विरस है, निराशा है, बेजान है, जीवन ही नहीं है प्रेम के बिना। तो ये दूसरी बात थी, प्रेम का महत्व। तीसरा, यदि तुम्हें प्रेम का सागर मिला है तो क्या करना है, किया जाना है, क्या करना है? इस मुरली में चार बातें हैं। पहला तो स्वमान, और एक बात, इन स्वमान का तुम्हें क्या होना चाहिए? नशा, फकूर और रुहाब। रूहानी नशा, रूहानी फकूर, रूहानी रुहाब। ये जो तुमको प्रेम मिला है भगवान से, प्रेम, भगवान का प्रेम, ये जो डिवाइन लव है, इस डिवाइन लव का तुम्हें नशा होना चाहिए। शुद्ध घमंड कि हमें वो मिला है, जो किसी को नहीं मिला वो हमने पाया, जो किसी को प्राप्त नहीं है वो हमें प्राप्त है, जो संसार में अलभ्य है वो हमें उपलब्ध है, हमें मिल गया। तो सबसे पहला तो नशा, रुहाब और नशा, रुहाब और फकुर, एक। दूसरा, संसार की आत्माएं और प्रेम। तीसरी बात, अब तुम्हें सागर मिला है प्रेम का तो करना क्या है? बैठ के देखना है, बैठ कर देखना है, किनारे पर बैठकर सागर की लहरों को देखने में बड़ा आनंद आता है। सोच रहना है, क्या करना है? इसके पहले भी एक बार सुनाया था, पथ पर तो सब चलते हैं, मैं पहला खोजा नहीं अगम भव सागर का, मुझसे पहले इसको कितनों ने था, तल के मोती खोजे परखे बिखराए, डूबे है पर मिट्टी का कौल निभाया है, मैं भी खोजी हूं मुझ में उनमें भेद यही, मैं सबसे महंगे उस मोती का आशिक हूं, जो मिला नहीं उसे पा लेने की धुन मेरी, तुम मिला सहजो घर की बातें किया करो, मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो, मैं गोताखोर हूं। गोताखोर संतुष्ट नहीं है भंवर पर, किनारे पर बैठकर भंवर की बातें करने में। पथ पर तो सब चलते हैं, चलना पड़ता है, पर मेरे चरण नया पथ चलना सीखे हैं, तुम हंसो मगर मेरा विश्वास न हारेगा, जीने के अपने अपने अलग तरीके हैं, जिस पथ पर कोई पैर निशानी छोड़ गया, उस पथ पर चलना मेरे मन को रुचा नहीं, कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो, मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। तट पर बैठकर भंवर की बातें करना मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे क्या स्वीकार है? गहरे जाना। कांटे रोंदूंगा, अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो। जिस पथ पर कोई पैर निशानी छोड़ गया, उस पथ पर चलना मेरे मन को रुचा नहीं। कांटे रोंदूंगा, अपनी राह बनाऊंगा। मुझे गहरे जाना है, मैं वहां नहीं रुक सकता। तुम फूलों भर की डगर की बातें किया करो, तुम भंवर की बातें वहां बैठकर करते रहो, पर मुझे तो जो मिला नहीं उसे पा लेने की धुन मेरी, जो अब तक मिला नहीं है, वो जो ज्ञान की गहराई है जिस तक आज तक कोई पहुंचा नहीं, उसको मुझे पाना है, उसको मुझे पकड़ना है। इसके लिए मैं मुझे तो गहरे जाना है। जिसको जहां बैठना है बैठे, कंफर्ट जोन में, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर, कांटे रोंद रहा हूं और मुझे गहरे जाना है। तो तुम्हें प्रेम का सागर मिला है तो क्या करना है? दो चीजें करनी है। क्या करना है? मानना है और समाना है, ये दो चीजें हैं। मानना है और समाना है। समाना अर्थात क्या करना? एक सागर है, एक सागर, अब उसमें डूबना अर्थात क्या? स्वामी विवेकानंद को जब वो नरेंद्रनाथ थे, उनके गुरु ने एक प्रश्न पूछा था, उनको कहा था ये चाय का प्याला है, तुम क्या बनना चाहोगे? वो मक्खी बनना चाहोगे जो इस प्याले में डूब जाए, या इस प्याले का जो क्या कहते हैं इसको, किनारा, उस पर घूमने वाली मक्खी बनना चाहोगे कि डूबने वाली मक्खी बनना चाहोगे? वो कहता है मैं इसकी ब्रिम जो है ना, वो जो किनारा, वहां घूमूंगा, क्योंकि मुझे डूबना नहीं है। डूबने से तो डर है, कौन डूबेगा, क्यों डूबेगा, यहां सेफ है ना, ये ग्लास है, तो यहां घूमते रहो गोल 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 गोल। तो उनके गुरु उसको कहते हैं कि जिस समुद्र की मैं बात कर रहा हूं वो ये वाला नहीं है, वो ओशन ऑफ इटर्निटी है, अनंत का वो सागर है, और अनंत के सागर में जो डूबेगा कभी मरेगा नहीं, क्योंकि वो अनंत है। तो परमात्मा भी अनंत सागर है, उस सागर में फेरी लगाकर नहीं आना है। तुम कौन सी परवाने हो? जल मरने वाले परवाने, फिदा होने वाले हो, मर मिटने वाले हो। तो सागर में क्या करना है? समा जाना, डूब जाना, मिट जाना, एक हो जाना, जब तक वो सागर और हम मिल ना जाए, एक ना हो जाए। तो कैसे होंगे ये? ये तो काम है, मुरली से एक ही काम दिया है, ये सबसे मुख्य, कि सागर में क्या करो, समा जाओ और मानो और समाओ इस सागर में। तो इस सागर में कैसे समा जाएंगे? पहले मानो, और डूबेंगे कैसे इस सागर में? विठल भाई, आशीष भाई, आशीष भाई और प्रकाश भाई, कैसे डूबेंगे इस सागर में? एक है परमात्मा सागर है, और उसका जो ज्ञान है अर्थात मुरली भी एक सागर है। तो परमात्मा में डूबना अर्थात उसके ज्ञान में डूबना, परमात्मा में डूबना अर्थात उसकी श्रीमत में डूबना, परमात्मा में डूबना अर्थात उसकी सेवाओं में डूबना, परमात्मा में डूबना अर्थात उसके सिखाए हुए राजयोग में डूबना, परमात्मा में डूबना अर्थात सेवा, सेवा में आ गया। तो तो ईश्वरीय प्रेम में डूब जाना अर्थात रंग जाना, अर्थात संसार की जो पकड़ है, संसार का जो प्रेम है, उससे किनारा करना। सूक्ष्म में अपने आप किनारा हो जाएगा। जब हम कह रहे संसार अर्थात संसार की आसक्तियां, संसार के मोह बंधन, संसार की वासनाएं, संसार के भोग विलास, संसार के विकार, इन सब से निकलकर एक ईश्वरीय प्रेम में डूब जाना, और लंबा समय डूबे रहना, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, जब मधुबन में है तब नहीं, एक महीना नहीं, छह मास नहीं, एक साल नहीं, छह साल नहीं, कितना समय? लॉन्ग टर्म, और जो जितना ज्यादा डूबा रहेगा उसको उतना नशा रहेगा। इस ज्ञान में चलने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? नशे से भी ज्यादा और क्या चाहिए? जुनून, जुनून चाहिए, जुनून। जुनून क्या होता है? जुनून क्या होता है? अरेबियन लिटरेचर में प्रेम की 7 स्टेजेस का वर्णन करते हैं। अरेबियन लिटरेचर में कहते हैं प्रेम 7 अवस्थाओं से गुजरता है। कौन कौन सी? इस पर क्लास भी हुआ था कभी, वैलेंटाइन डे पर, हाँ पिछले साल। सबसे पहली अवस्था होती है आकर्षण, अट्रैक्शन, एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। दूसरी अवस्था होती है इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन उसको कहते हैं जो युवकों में पाया जाता है ना, किसी से प्यार ही हो जाता है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा, आकर्षण से भी ज्यादा थोड़ी आगे बढ़ती है स्टेज, क्रश, इन्फैचुएशन जिसको कहते हैं, तो वो वाली अवस्था, बहुत ज्यादा आकर्षण, और फिर धीरे धीरे लव। तीसरा है इश्क, लव, वो तीसरी अवस्था है। उसके बाद में चौथी अवस्था होती है जिससे प्यार है, इश्क, इश्क के बाद की अवस्था, उस पर बहुत ज्यादा उस पर क्या कहते हैं, आदर, सत्कार, रिस्पेक्ट, उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा उसका रिस्पेक्ट करने लगता है, ये चौथी अवस्था है। उसके बाद में पूजा, उसकी पूजा ही करना चालू करता है, वर्शिप, इबादत, अकीदत और इबादत, ये सब उर्दू के शब्द है, तो यहां पर वो उसकी इबादत, पूजा करना चालू कर देता है। पांचवा, छठवा जुनून, पांचवा है जुनून। अगर वो मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिला, नहीं मिली तो उसी को मार देंगे। और सातवा फना, फना अर्थात मौत, खत्म हो जाना उसके लिए, या तो खुद मर जाऊंगा या उसको मार दूंगा, दोनों चीजें। तो वो कहते हैं प्रेम इन 7 अवस्थाओं से गुजरता है, अलग अलग अवस्थाओं से, आकर्षण से चालू होता है, फिर उसके थोड़ा आगे बढ़ता है। इसको अलग अलग नाम दिए उन्होंने उर्दू के, तो ईश्वरीय प्रेम। प्यार अर्थात त्याग और समर्पण ही है। संसार शारीरिक प्रेम को प्रेम कहता है, वो प्रेम नहीं है, वो हिंसा है, वो काम है, वो काम को प्रेम की संज्ञा देता है। संसार में प्रेम बहुत ही कम है, ना के बराबर, क्योंकि प्रेम अर्थात प्रेम को शरीर से कोई लेना देना नहीं, सबसे पहली बात तो। और संसार में जो भी प्रेम है वो शरीर पर निर्भर है, शरीर के मिलन को ही सबसे बड़ा प्रेम कहा जाता है, और वो सबसे बड़ी भ्रांति है। बाकी प्रेम को शरीर से कोई लेना देना नहीं, प्रेम नॉन फिजिकल है, प्लेटोनिक जिसको कहते हैं। तो इस परमात्मा सागर में क्या करना है? डूब जाना अर्थात समा जाना, अर्थात उसकी गहराई में जाना, ये समझना कि अभी हमारा जो प्यार है परमात्मा से ये संपूर्ण नहीं है, इसको और बढ़ाना है, और आगे जाना है इस प्यार में। प्यार की अंतिम परिभाषा, अंतिम स्टेज कौन सी बताई? फना अर्थात कुर्बानी, उत्सर्ग, समाप्त हो जाना, मिट जाना, रहना ही नहीं। प्यार अर्थात जहां दो ना रहे, एक हो जाए, ये प्रेम होता है। प्रेम गली अति संकरी, जहां पे दो ना समाए, दो नहीं जा सकते, द पाथ इज नैरो। जीसस क्राइस्ट ने कहा है ये जो मार्ग है बहुत ही नैरो है, इसमें तुम 4-5 लोगों को लेके नहीं चल सकते, मेरा पति भी आ जाए, बच्चे भी आ जाए। द पाथ इज नैरो, तो समा जाना, इस ज्ञान में समा जाना और प्रेम में समा जाना। ज्ञान में समा जाना अर्थात उसने अब तक जो कुछ कहा है वो पढ़ते जाना, पढ़ते जाना, दिनचर्या में टाइम वेस्ट नहीं करना है, कहीं पर भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छा सफल किया टाइम, कितना पढ़ लिया आशीष भाई? ट्रेन सफर कहीं से जा रहे हैं, वो टाइम वेस्ट हो जाता है, वो टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी हालत में। हमारा टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी सेवा कर रहे, स्थूल सेवा जहां बुद्धि का काम नहीं है, ज्ञान का चिंतन अंदर ही अंदर चालू रहे। जिसने समय को सफल किया, जिसने समय को बर्बाद किया, समय उसको बर्बाद कर देगा, और जिसने समय को सफल किया वो सफलता को पाएगा। तो समा जाना। और लास्ट बात थी मुरली में, इस ईश्वरीय प्रेम के चार फायदे कौन कौन से? समाधान स्वरूप, किसी से प्रश्न का समाधान पूछने की आवश्यकता नहीं, ये इसका उत्तर क्या है, उसका उत्तर क्या है, उसका उत्तर क्या है, उसका उत्तर क्या है। किसी ने एक सुंदर मैसेज भेजा कि अपने प्रश्न भगवान से पूछो, सोशल मीडिया से नहीं। अपने प्रश्न किससे पूछो कि उत्तर भगवान से पूछो, सोशल मीडिया से नहीं। तो सबसे पहला फायदा समाधान स्वरूप। ईश्वरीय प्रेम में ऐसा तिलस्म, ऐसा जादू है कि उसमें डूबते ही जीवन के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मिल जाएंगे। पहला। दूसरा, विघ्न विनाशक, जो भी विघ्न आएंगे वो स्वतः ही विनाश हो जाएंगे। परमात्मा प्रेम में वो पावर है कि हम उस प्रेम में आगे बढ़ते जाए बढ़ते जाए, जितने भी विघ्न आते जाएंगे अपने आप नष्ट होते जाएंगे, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, डूबे रहो। तीसरा, माया जीत, विकार, विकारों का जितना आक्रमण होगा, यदि हम प्रभु प्रेम में कोई खोया है क्या उसको विकार सता सकते हैं? क्या उसके पास काम आ सकता है, क्रोध आ सकता है, लोभ आ सकता है, जो ईश्वरीय प्रेम में डूबा हुआ है, याद में मगन है, नहीं आ सकता। तीसरा, चौथा फायदा, चार फायदे गिनाए, चौथा या कहो पहला ये था, बाकी ये तीन थे। विघ्न विनाशक बोल दिया, समाधान स्वरूप, माया जीत, चौथा हलचल। कोई भी हलचल से या समस्याओं में अप्रभावित रहेंगे। योगी आत्मा कहां हिलती है? समस्या के समय या हलचल के समय, बाकी ठीक रहता है, पर जब हलचल आ गई तब प्रभावित हो जाती है। तो हलचल में अप्रभावित होंगे, तो ये चार फायदे हैं। क्या करते हैं? विश्व के प्यारे, वो हमने उसमें पहले ही बोल दिया, तो प्रभु प्यारे तो अपने आप विश्व के प्यारे। तो ये चार बातें फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तुम्हें रूहानी फकूर, नशा और रुहाब रहना चाहिए। कौन सा? ईश्वरीय। हम योगी है, स्नेही है, सहज योगी है, सहयोगी है, प्रभु के प्यारे है और विश्व के प्यारे है, परमात्मा प्यार के पात्र है, परमात्मा प्यार के अधिकारी है, और परमात्मा प्यार हमें प्रॉपर्टी के रूप में मिला है। तो ये तुमको नशा होना चाहिए, पहला। दूसरी बात, संसार की आत्माएं और प्रेम, उनके पास प्रेम नहीं है, प्यासी है, और हमको तो प्रेम का सागर मिल गया। तीसरी बात, इस सागर में क्या जाना है, क्या करना है? डूब जाना है, देखना है प्रभु एक सागर है, परमात्मा प्रेम, और मैं आत्मा ऊपर से छलांग लगाई और क्या कर रही हूं, नीचे 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 जा रही हूं। जैसे वो नमक का पुतला सोचता है मुझे देखना है सागर कितना गहरा है, फिर मैं आके बताऊंगा तुमको, अपने साथियों से कहता है मैं सागर कितना गहरा है देख के तुमको बताता हूं, और वो कूद जाता है नमक का पुतला, और फिर देखते जाता है अच्छा इतना गहरा है, इतना गहरा है, इतना गहरा, और जैसे जैसे नीचे जाते जाता है तब तक खुद ही समा जाता है। एक गांव में एक दीवार है, और उस दीवार में जो भी चढ़ता है और देखता है और कूदता है वापस आता ही नहीं है। लोग आश्चर्य है कि ऐसा क्या है उस दीवार के पीछे कि देख के कोई वापस ही नहीं आता है। वो सोचते हैं अगली बार अगर कोई चढ़ा ना उसके पैर को रस्सी बांध देंगे हम। तो जैसे एक बार एक व्यक्ति चढ़ता है और देखता है और कूदने वाला होता है तो उसको नीचे खींचते हैं और नीचे गिरता है। अब बोलते बताओ तुमने क्या देखा, वो कहता है वो गूंगा हो जाता है। ये जो दीवार है इसको कहते द वॉल ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस। इस दीवार पर कुछ ही आत्मा बैठी हुई है जो कि ना उधर जाती है न इधर, परंतु वहां बैठकर यह बता सकती है वहां क्या है, अनंत में क्या है। ऐसी कुछ आत्माएं संसार में रहती है कि जिनका अपने जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। वो दादियां वहां बैठी है उस दीवार के ऊपर, उनको यह पता है उधर क्या है, पर वो उधर जा नहीं रही है, इनके कल्याण के लिए वहां बैठी हुई है। द वॉल ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस केवल संसार के कल्याण के लिए उस दीवार पर बैठी हुई है। बाकी उनका इस संसार में कुछ पाने योग्य कुछ नहीं है, जो पाना था पा लिया है, केवल संसार के उदाहरण के लिए। दादी क्यों बैठी है? दिखाने के लिए कि यह भी किया जा सकता है, 130-103 वर्ष की उम्र में यह सारा कुछ किया जा सकता है, और तुम जवान, और तुम कहते हो मुझे थकान, पीठ दर्द, कमर दर्द, बुखार, इसलिए मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकता, कर सकती। वो दिखाने के लिए वहां पर बैठी हुई है, वो द वॉल ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस। तो ये दूसरी बात। फिर उसके बाद बताया, ये पहला नशा, दूसरा संसार का प्रेम और ये प्रेम, तीसरा समा जाना, इस प्रेम में समा जाना, और चौथा ये चार फायदे। ऐसे प्रभु प्रेम के पात्र आत्माओं को, अब बोलना चालू करो आप, ऐसे स्नेही आत्माओं को, ऐसे सहयोगी आत्माओं को, ऐसे सहजयोगी आत्माओं को, ऐसे परमात्मा के प्यारी आत्माओं को, ऐसे जग के प्यारे आत्माओं को, ऐसे प्रॉपर्टी के अधिकारी आत्माओं को, ऐसे रूहानी फकूर, रूहानी नशा, रूहानी रुहाब में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे समाई रहने वाली आत्माओं को, मानने वाली आत्माओं को, ऐसे केवल किनारे पर न रहने वाली आत्माओं को, केवल सुनने न सुनने वाली आत्माओं को, किनारे वाले आत्माओं को पकड़कर समाने वाली आत्माओं को, और ऐसे 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 परमात्मा प्रेम से विघ्नजीत बनने वाली, विघ्न विनाशक बनने वाली, मायाजीत बनने वाली, समाधान स्वरूप बनने वाली, हलचल और समस्याओं में अप्रभावित रहने वाली आत्माओं को, ऐसे 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 फना होने वाली आत्माओं को, लगन में मगन आत्माओं को, ऐसे ऐसे हाँ मुरली का बताओ, ऐसे वो हो गया, ऐसे न्यारी और प्यारी आत्माओं को, ऐसे विश्व की प्यारी आत्माओं को, ऐसे उस दीवार पर खड़ी रहकर दूसरों को राह दिखाने वाली आत्माओं को, क्योंकि उधर गए तो वापस आएंगे नहीं, तो फायदा क्या? इसके लिए किसी को तो खड़ा रहना पड़ेगा, बड़ा बैठना पड़ेगा। तो वो चेतना की उस दीवार पर खड़ी रहकर विश्व को प्रकाशित करने वाली आत्माओं को, राह दिखाने वाली आत्माओं को, ऐसे निरंतर याद में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे परमात्मा नशे वाली आत्माओं को, और ऐसे डैश 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 आत्माओं को, और ऐसी बहुत सारे सोमान वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।